नमो अवदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो आमरा বহু ভাগ্যের ফলে মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। মনুষ্য জন্ম ভাগ্যের ফলে পেলেও আরো বেশি ভাগ্যের প্রয়োজন হয়েছে আমাদের সাধুসঙ্গ লাভে। কেননা মনুষ্য হয়েও প্রকৃত মনুষ্যের কর্তব্য কি তার সাধুসঙ্গ ব্যতীত জানা যায় না এবং আচরণ করা যায় না। আমরা এই প্রকার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু তথাপি আমরা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারছি না। কেন, কি কারণ? এটা সাধুসঙ্গ পেলাম, মনুষ্য জন্ম পেয়েছি তো বটেই, তবে কেন হচ্ছে না? যদি আমরা মনে করি সাধুসঙ্গ হচ্ছে না, কালিংবা হচ্ছে না, সেসবগুলি আমাদের ভালোভাবে যদি বিচার করা না যায় তাহলে আমাদের অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। সাধুসঙ্গ হচ্ছে না কেন? এত সাধু বা একজন সাধুও তো আছেন, তার মুখ থেকে তো আমরা এত সমস্ত হরিকথা শুনছি, তথাপি কেন আমাদের কোনো পরিবর্তন উপলব্ধি হচ্ছে না? কোথায় এটা ত্রুটি হচ্ছে সেটা কি আমাদের ভালো করে দেখা উচিত নয়? আমাদের এই চেষ্টা প্রকৃত কি চেষ্টা হচ্ছে, না কোথাও ত্রুটি নিয়ে এটা প্রকৃত হচ্ছে না? সেখানে দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রকৃত চেষ্টা করতে পারছি না। আমাদের পূর্বপূর্ব অনাদিকালে যে সংস্কার, সেই সংস্কার অনুসারে আমরা ভেসে চলেছি, সেই সংস্কার অনুসারে আমরা ভোগ প্রবৃত্তিতেই মত্ত রয়েছি। ভোগ প্রবৃত্তি আমাদের কিছুতেই দমিত হচ্ছে না। সেই ভোগ প্রবৃত্তি নিয়েই আমরা সাধুসঙ্গ করতে এসেছি, সেই ভোগ প্রবৃত্তি নিয়েই আমি আমার পরমার্থের চেষ্টায় নিযুক্ত হতে চাচ্ছি। তার জন্যই আমাদের যে কোনো প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না এটা আমরা বুঝতে পারছি না। সুতরাং ভক্তি অনুশীলনগুলি আমার নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। আমরা যে ভক্তির অনুশীলন, ভগবানের মহিমা, ভগবানের প্রিয়তমা রাধারানীর মহিমা, তার গুণ লীলা ইত্যাদি শ্রবণ করছি, বা তাঁদের কাছে নানা প্রকারের আমাদের প্রার্থনা জানাচ্ছি, বাধ্যত খুব কাতরভাবেই আমরা জানাচ্ছি মনে করছি, কিন্তু বস্তুত পক্ষে সেইগুলি যেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না বা চিত্ত আকর্ষণ করছে না। এগুলি বিচার করলে দেখা যাবে অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। আমাদের এইগুলি প্রাকৃত চেষ্টা সেই অপ্রাকৃত বস্তুর কে আকর্ষণ করতে পারছে না। প্রাকৃত অর্থাৎ আমাদের ভোগ প্রবৃত্তিমূলক যে চেষ্টা, ভোগ প্রবৃত্তিকে আমাদের পরিত্যাগ করতেই হবে, এই না হলে আমরা সেবা রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব না। যতদিন আমরা ভোগ প্রবৃত্তি নিয়ে থাকব ততদিন আমাদের সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না। প্রত্যেকটি আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য। সুতরাং আমাদের সেই চেষ্টার মুখ্য অন্তরায় যে ভোগ প্রবৃত্তি, সেটি আমাদের বিদমিত হওয়া প্রথমত আবশ্যক। এই জন্যই ভক্তির অনুশীলন করতে করতে এমন ভক্তি আমাদের অনুশীলন করা প্রথম মুখে দরকার, যাতে আমাদের ভোগ প্রবৃত্তি বিদমিত হয়ে আমরা তা থেকে মুক্ত হতে পারি, যার দ্বারা আমরা ভক্তিরাজ্যে সেই উন্নত বিচার বা উন্নত সাধনগুলিকে সক্ষম করতে আচরণ করতে সক্ষম হই। ভক্তি পরেশানুভব বিরক্তির অন্যত্র, এই যে কথাগুলি শাস্ত্রে আমাদের জন্য উল্লিখিত হয়েছে, এইগুলি আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভক্তি কাকে বলে সেটা বিচার করতে গিয়ে আমরা মনে করি ভক্তির শুদ্ধ ভক্তির আচরণগুলি বাহ্যিকভাবে আচরণ করলেই সেটি ভক্তি হবে, কিন্তু তার প্রাণ যে বৃত্তি সেটিকে আমরা লক্ষ্য করছি না। আমরা যদি শ্রীমদ্ ভাগবত অনুশীলন করার যে আদেশ, সেই শ্রীমদ্ ভাগবতকে রোজই আলোচনা করে পড়ি, গ্রন্থ পড়ি, তাহলেই আমরা মনে করছি আমাদের ভক্তি হবে। কারণ না এইটি তো উপদিষ্ট হয়েছে যে সাধুসঙ্গ নাম সংকীর্তন ভাগবত শ্রবণ, এই হইতেই আমাদের পরম ভক্তি লাভ হবে। সাধুসঙ্গ নাম সংকীর্তন ভাগবত শ্রবণ এই কোনোটাই ভক্তি দিতে পারছে না আমাদের কাছে, যেহেতু আমাদের সেই এই তিনটি কর্মের মধ্যে ভোগ প্রবৃত্তি যুক্ত অবস্থা রয়েছে। সুতরাং সেই ভোগ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সাধুসঙ্গ ঠিক হয়ে যায়, শ্রীমদ্ ভাগবত অনুশীলন হয় না এবং ভগবানের নাম সংকীর্তন হয় না। আমাদের এত নাম করছি, তথাপি আমাদের নামের ফল আমরা লাভ করতে পারছি না। আমরা আশা করছি নিশ্চয়ই হবে, নিশ্চয়ই হবে, আমরা এটি সন্তুষ্ট। কিন্তু এই মনুষ্য জন্ম চলে গেলে যে আমার কত সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে সে কথা একবারও ভাবি না। এইরকমভাবে আশাবন্ধ সবৎকণ্ঠা যে কথাগুলি রয়েছে শাস্ত্রে, সেগুলির কি প্রকৃত তাৎপর্য আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না। আমরা এই মনুষ্য জন্ম এই প্রকার ভোগ প্রবৃত্তিতে মুগ্ধ হয়ে আসক্ত হয়ে তথাপি তার প্রতি আমাদের বিতঃশ্রদ্ধা আসছে না। সুতরাং ভক্তি এই ভক্তির যে অনর্থ নিবৃত্তি পর্যন্ত আমাদের যত্ন যে প্রকার প্রগাঢ় রূপে করা উচিত সেটি আমাদের হচ্ছে না। অনর্থ মুক্তির পর তবে আমাদের সেই প্রকার সাধন ভজন বা ভক্তিতে ক্রমশ ক্রমশ অধিকার লাভ হবে। প্রথম মুখেই আমাদের অনর্থযুক্ত অবস্থায় সেই প্রকার ভক্তির অনুশীলনগুলি, অনর্থ মুক্ত অবস্থায় যে ভক্তির অনুশীলন সেগুলির সঙ্গে সমতা যুক্ত হতে পারছে না। সুতরাং সর্বতভাবে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে ভোগ বৃত্তি পরিত্যাগ করে সেই মুক্ত অবস্থা লাভ করার। মুক্তির পর তখনই গুরুপাদ পদ্মের প্রকৃত উপদেশ আমরা বুঝতে পারব এবং সেই বৃত্তির উদয় হলে তখন আমরা ভক্তির দিকে অগ্রসর হব। তখনই আমাদের প্রকৃত অনাথ নিবৃত্তি তত নিষ্ঠা, আমাদের এই নিষ্ঠা এখন কোথায় রয়েছে? নিষ্ঠা আমরাই নিষ্ঠা বলতে কি বস্তুকে বোঝায় না, একমাত্র আমাদের ভগবানের সুখ চেষ্টাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু দেখি তো আমরা প্রত্যেকটি কর্তব্যে ভক্তি অনুশীলনের মধ্যে সেই সুখ চেষ্টা আছে না নিজেদের সুখ চেষ্টা আছে। আমরা কীর্তন করতে গিয়েও সুর তার রয় ইত্যাদি সেখানে যথাসাধ্য উন্নতভাবে করবার চেষ্টা করছি, সেটা কি কিছুটা প্রীতিমূলকভাবে হচ্ছে না আত্মের দিকে প্রীতিমূলক ভাবে হচ্ছে, সেখানে সেখানে ভক্তির প্রকৃত তাৎপর্য পালিত হচ্ছে না। প্রত্যেকটি বস্তু মা যশোদা কৃষ্ণকে ডাকছেন, লালা ইদার আজা, কৃষ্ণ ছুটে আসছেন তার কাছে, এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরছে। আমি ও ঠিক বললাম, ওই রকম ভাবেই আমি টেপ করে নিলাম, টেপ করে নিয়ে লালা ইদার আজা আমিও বলছিল টেপ বাজাতে লাগলাম। কৃষ্ণ কি আমার কাছে আসবেন? সুখদেব গোস্বামী যেরকম ভাবে ভাগবত পাঠ করে পরীক্ষিত মহারাজকে ফল নিকট ফল দান করেছেন, আমি ঠিক সেই রকমই টেপ করে নিলাম। সেই টেপই হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ। কিন্তু আমি সেই শ্রীমদ ভাগবত গ্রন্থ রোজই অনুশীলন করছি, রোজই পড়ছি, তথাপি পরীক্ষিত মহারাজের মতন ফললাভ আমাদের কেন হচ্ছে না? ওই রকম টেপ করে নিলেও শ্রীমদ ভাগবত যাহা ভাগবত পর বৈষ্ণব স্থানে তবে কেন বলা হয়েছে না? টেপের মধ্যে বস্তুত পক্ষে মা যশোদার যে লালা আজা, এর মধ্যে যে বৃত্তিটি রয়েছে, কৃষ্ণের প্রতি যে স্নেহটা রয়েছে, যে মমত্ব জ্ঞান রয়েছে, কৃষ্ণকে যে কতটা ভালোবাসাটা রয়েছে, সেটা এই লালা আজা শুধু এই কথাটা টেপেতে ধরা হলেও তার মধ্যে সেই বৃত্তিটা থাকে না। সুতরাং সেই বৃত্তি শূন্য হয়ে আমাদের এই অনুশীলনগুলি সুষ্ঠু ফল দিতে পারছে না। সুষ্ঠু ফল পেতে হলে সেই বৃত্তি যাদের আছে সেই রকম ব্যক্তির আনুগত্য প্রয়োজন। তার জন্যই যাহা ভাগবত পর বৈষ্ণবের স্থানে, বৈষ্ণব মানে তিলকমালাধারী ইত্যাদি বা বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছে তা নয়, এখানে ওই প্রকার বৃত্তি বিষ্ণু ভক্তি যার সেই রকম ভাবে বর্তমান, সেই রকম ব্যক্তির কাছ থেকে তুমি ভাগবত পড়ো শোনো। তা নইলে সংস্কৃত টিকা ভক্তা ভাগবতন গাজ্যম ন বুদ্ধা নৌছে টিকা এই কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সকলেই আমাদের প্রচেষ্টাগুলি যদি সেই শুদ্ধ ভক্তিমান সেই প্রকার ভগবানের প্রতি সেবা বুদ্ধি পরায়ণ ভাগবতের সঙ্গে দ্বারা আমাদের অনুশীলিত হয় তবেই আমাদের সার্থকতা হবে, নচেত এইরকম বিফলতায় প্রকাশ করবে। Association of pure devotees, and we are fortunate enough to have got that association. In spite of that, the perfect result we are not receiving. Why? This is the point. What is the wrong there? We should judge it. So many kirtans, so many lectures and so many discussion is without good effect, I think so, because we are not proceeding at an inch even. What is the, the good we are receiving? Bhakti, parasanubhava, virakti, annatya. Jaisatrika kalaha prapadda manasya. These three things are simultaneously at a time performed by the practice of devotion. If we are performing devotees, there must be disagree or disattachment with the material things. These two will go simultaneously. But if we think what disattachment we have received, we find there nothing. Then the practice of devotion is of not properly used to for us. So we should try properly to attain devotion. If we do kirtan with the good tune and proper tune also, that will not be considered as devotion, because Mother Yashoda calling Krishna, "Oh Krishna, come here." Krishna comes to her lap and embraces him with both hands. But that sound, if I take, why the same result is not received? If we play on that tape, like that sound is coming out, in spite of that Krishna does not come to us. Why? Krishna knows that it is not my mother. It is tape. Why does that laugh? Only the sound is coming. Therefore, the laugh is the main thing. Not the sound, but we are practicing the sound. We are practicing the other things. We are trying to understand Srimad Bhagavat by the education of Sanskrit and intelligence only. Bhakta Bhagavatam Rajyam, no Buddha, no Chikaya. This is therefore advised, ordered by Lord Chaitanya Dev. So, Bhaktya Bhagavatam, Bhagavatam. So, why we are ordered to submit ourselves to the pure devotee who has got that sort of true love for Krishna? Unless and until that position we accept as our tutor or as our master, we cannot get the pure devotion. Thank you.
Okay.
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरनुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिजे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणा अंगश्यामलिं शताभिरभितो मंदे कृतेन्दीवरं जद्गंजागुदरोति संविदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायें दामो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणम्। रोगं संमुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं करम्भोजयुग्मेन शातङ्कनिष्ठम् मोस्वासकं पार्थिकाङ्ककण्ठ स्थितदैव दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। श्री দামোদরাষ্টকম সনাতন গোস্বামীর টিকা। যশোদামা কৃষ্ণকে তিনি বাম হাতে ধারণ করে তাহার দক্ষিণ হাত, আর ডান হাতে থেকে লাঠিয়া বেঁত উঠে দিয়েছে, উঠায়া। আমার বাংলা ভিতর সমঝ লেগা না, নেই বায়া হাতে দাইনা হাতে কৃষ্ণ কো ডরা রই হ্যাঁ, ধমকা রে মারু। আর কৃষ্ণ রো রে মৈয়া মুঝে মত মার, মুঝে মত মার। উস সময় নেত্র যুগমামৃজন্তম, কৃষ্ণ তার বাম হাত দিয়ে দা হাত ধরে নিয়েছেন যশোদামা, বায় হাত ধরে ক্রন্দন করে ও করে, আর হাতেলি দ্বারা হাত কে দ্বারা আঁখো কো দোনো কো মিচ রহে হ্যায়। ঝরাঝর নেত্র সে আঁসু প্রবাহিত হো রহে হ্যায় আর কহ রহে হ্যায় যে মৈয়া মুঝে মত মার, মুঝে মত। জব বেত উঠাতি হ্যায় তো ও পিছে চলে যাতে হ্যায়। শায়দ হমনে কহ দিয়া থা না, কল রস্সি মঙ্গায়া ইসকো ভি কহ দিয়া, উসকো বাঁধ দিয়া। উনোনে বাঁধ দিয়া এটা হয়ে গেছে, ইয়ে সব গুলি হয়ে গেছে। তব যশোদা মৈয়া কৃষ্ণ কো ওখল মে বাঁধনে কে পশ্চাৎ, ওখল মে কেসে বাঁধা, কৃষ্ণ কা পহলে কমর বাঁধা আর ফির বাঁধ করকে এক পেচ লগা দিয়া পিছে, আর ফির উসকো লেকর কে ওখল মে বাঁধা, জিসে কৃষ্ণ কা হাত ওহা না পৌঁছ সকে, কৃষ্ণের হাত ওখানে যেন না যায়। তখন যশোদামা বললেন, যেসে ছেলেদেরকে বললেন, তোমরা দেখা শোনা করে অভি রো রা, তুম লোক ইসকে পাশ মে রহো, আর কুছ চিত্ত বিক্ষিপ্ত সা উনকা হো রহা, মানে গলত কি আয়া ঠিক কিয়া অভি কুছ নাই সমঝ রে। বলি যে মে যা রহি হুঁ দধি মন্থন করনে কে লিয়ে, ঘর কে অর কাম করনে কে লিয়ে, তুম লোক বচ্চে ইসকো দেখনা। ইতনে মে দাম সিদাম সুদাম বসুদাম স্তো কৃষ্ণ লবঙ্গ অর্জুন সুবল মধুমঙ্গল ইত্যাদি আ গে। থোড়ি দের কে বাদ মে রোহিণী মৈয়া বলদেব কো লেকর কে নন্দ বাবা কে বড়ে ভাইয়া উপানন্দ কে ঘর সে ও ভি আ গই। ও তো ধীরে ধীরে যশোদা মৈয়া কে হাঁ চলি গই, আর দেখা যে ইয়ে ক্যা হো রহা, গোপিয়ো সে পুছা, ইধর বলদেব জি আয়ে সখাও কে বিচ মে, উনোনে দেখা আরে ইয়ে ছোটা ভাইয়া রো রহা হ্যায়, আঁসু কুছ সুখ রহে হ্যায়, কালি ভি লগ রহি হ্যায়, কাজল ভি লগ রহা, গঙ্গা যমুনা দোনো ইয়াহ পর প্রবাহিত হো রহে হ্যায়। আরে ইসকো ওখল মে কিসনে বাঁধ দিয়া, বড়ে ক্রোধিত হো গে, তুমকো ভাইয়া কিসনে বাঁধা, সখাও সে পুছা কিসনে বাঁধা, বড়া উনকো ক্রোধ হুয়া। উনোনে সোচা জিসনে বাঁধা উসকো মে দণ্ড দুঙ্গা, বলদেব প্রভু দণ্ড দেনে মে সমর্থ হ্যায়, ইসলিয়ে ও পুছনে লগে। মধুমঙ্গল জি নে কান মে উনকো কহা, কানে তে বললেন, মা বেঁধেছে, মা নে বাঁধা, শুনতে যে মৈয়া নে বাঁধা হ্যায়, উনকা সারা ক্রোধ দূর হো গয়া। যশোদা মৈয়া কে ইহা ভি উনকা নেই চলেগা, বাসল্য কে মারে নেই চলেগা,
इसलिए वो निरुत्तर हो गए, चुपचाप हो गए, कुछ नहीं कर सके। सखाओं ने, बलदेव प्रभु जी ने कहा, बलदेव प्रभु जी बंधन खोल सकते थे, हो सकता है, किंतु यहां पर अभी सख रस में है, इसलिए ये भी नहीं खोल सकते। जब वो मधुर भाव में आएंगे तो शायद खोल सकते हैं, अन्यथा नहीं खोल सकते। सब सखाओं ने मिलकर के प्रस्ताव किया कि इस बंधन को खोल दिया जाए, गांठ को। मधुमंगल दौड़ करके आया, खोलने लगा, किंतु खुला नहीं। इतने में सिद्धांत जी आए, बोले अरे मैं खुलूंगा, उसको हटा करके जल्दी से। ये इतने में और 10 20 50 लड़के आकर के एक दूसरे को धक्का देते हुए खोलने लगे, किंतु कोई नहीं खोल सका। बात्सल्य रस का बंधन सख रस के द्वारा नहीं खुल सकता, नहीं खुला। अब तक कृष्ण पहले तो रो रहे थे, अब रोना अब बंद हो गया और बच्चों के साथ में हंसने भी लगे। कृष्ण ने भी सोचा कि मैं खोल लूं, किंतु हाथ नहीं पहुंचा। आखिर कृष्ण ने बच्चों ने कहा, अच्छा एक बात करो, थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोग चले खेलते हुए, और घर के बाहर में हम लोग खेलेंगे। और इधर कृष्ण ने क्या सोचा, ओहो अभी और कुछ लीला करनी है। नारद जी ने जमलार्जुन को साफ दिया, एक तुम जाओ वृक्ष हो जाओ। नारद जी कहीं जा रहे थे और ये कुबेर के धन कुबेर के पुत्र जमलार्जुन नल कुबेर मणिग्रीव किसी सरोवर में हिमालय के कैलाश के पास ही और एक सरोवर में उलंग होकर के अश्वराओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी उधर से जा रहे थे, अश्वराओं ने तो अपने कपड़े पहन करके और झट हाथ जोड़ करके दूर से खड़ी हो गई, नारद जी को प्रणाम किया। और ये उदंड धन के मत में उच्च कुल में जन्म लेने का और उच्च विद्या का गर्व और पांडित्य का गर्व, देखने में सुंदर सुकांत में, माने चार चीज, जन्म ऐश्वर्य सूत स्त्री, जिसको इन चीजों का गर्व होता है, धन का विद्या का उच्च कुल में जन्म लेने का और रूप का, वो भगवत भजन नहीं कर सकते, बड़ा भारी कठिन है। जिनको जो भजन कर सकते हैं वो बहुत उन्नत है। तो ये लोग गाली देने लगे, कहां चली गई हमें छोड़ करके, कहां का ये भिखारी आ गया और उसको दे करके यहां से छोड़ करके हमें चली गई, शराब भी पिए हुए थे। नारद जी ने कहा, देखो तो वृक्ष जैसे, इनको तनिक होश नहीं है। शंकर जी के मित्र कुबेर जी भक्त हैं और उनके लड़के ऐसे अधोगति में शराब पी करके अश्वराओं के साथ में ये भोग निष्ठा में मत हैं। अच्छा मैं तुमको दुरुस्त करता हूँ, यह कहकर कभी साप दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जब वृक्ष कहने के कहा, साथ ही साथ में अभी संपात का प्रभाव मालूम हुआ, उनको मालूम है हम लोग जड़ होकर के वृक्ष हो रहे हैं। जब उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की करने लगे, प्रभु हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, हम लोगों ने गलती की, हमारा अपराध हुआ, आप क्षमा करें। उनको दया आ गई, आज अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तब तक तो दंड तो भोगना पड़ेगा। जाओ तुम्हारा जन्म इधर उधर नहीं हो करके गोकुल में होगा, जमलार्जुन वृक्ष होकर के आएगा और वहां पर समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण स्वयं वहां पर आविर्भूत होंगे और खेलते 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 जब वो तुमको किसी प्रकार से स्पर्श कर देंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम लोग इस सब से दूर हो जाएगा, साथ साथ में तुमको भक्ति भी होगी। कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा को क्या है, सत्याभिधातम निज भक्त वृत्त भाषितम, अपना जो भक्त जो कह दिया है अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ करके भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले ये भगवान हैं, बड़े दयालु हैं। यद्यपि यहाँ पर माधुर्य रस की लीला हो रही है तभी ऐश्वर्य तो दूर होगा नहीं, ऐश्वर्य रहे या न रहे नर्वत लीला उनकी होनी चाहिए। इस लीला में जोग माया ने उनको स्मरण करा दिया और झट उदोखल जो बंधा हुआ था उसको लेकर के और बच्चे भी उसको ठेलने लगे। उनकी इच्छा हुई कि हम इनका उद्धार करें। बोलो इतना तो बोल लो कुछ। अब सखर यहाँ पर आरंभ हुआ, खींचते 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 जब दरवाजे के पास में लाए तो वहां पर दोनों वृक्ष एक से निकले हुए दो भागों में विभक्त, ओखल वहां अटक गई। कृष्ण वृक्षों से पार होकर के उस तरफ में चले गए और ओखल इधर में ऐसे अड़ गई। कृष्ण तो उधर में चले गए और सखा लोग इधर से ठेल रहे हैं। कृष्ण रस्सी से बंधे हुए हैं, रस्सी के द्वारा बंधे हुए और ओखल उस रस्सी से बनी हुई है। उस ओखल के स्पर्श से ही दोनों वृक्ष बड़े शब्द करते हुए और दोनों दो तरफ में गिरे, ऐसे ऐसे नहीं गिरे, बड़े जोर से शब्द हुआ। यहां एक विशेष मार्क करने की बात है, कृष्ण ने नहीं छुआ वृक्षों को, पार हो गए, रस्सी जो उनके कमर में लगी है उसे भी नहीं छुआ। उस रस्सी से जो छुआ हुआ ये ओखल है, ओखल के दोनों किनारे से वृक्षों में छुआ, स्पर्श हुआ। जैसे कोई बिजली का तार है, तुम हाथ से मत छुओ किंतु एक लोहा उसमें से छू दो जो कि बिजली से लगी हुई है, और बिजली से उस लोहा और उस लोहे से एक कोई तांबा लगा हुआ है उसको छू दो और वो तांबा एक पानी से छू रहा है, उस पानी को छुओ तो क्या होगा, बिजली उसमें चली आएगी। ऐसे ही कृष्ण की शक्ति अपने हाथ से नहीं छूने पर भी उस रस्सी के माध्यम से ओखल में आई और ओखल से दोनों को छुआ और दोनों का जितना पूर्व जन्म का संस्कार था बुरा वो सब जल करके खत्म हो गया और नारद ऋषि का भी संपात भी खत्म हो गया क्योंकि नारद जी ने ऐसा कहा। इसलिए कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भक्तों के माध्यम से, भक्तों के भक्तों के भक्तों के माध्यम से कृपा करते हैं और उसके द्वारा भगवान की कृपा संचरित होती है भक्तों में और भक्ति होती है। यहाँ पर इसी चीज को दिखलाया। बोलो तो भगवान मान लो और कृष्ण से संबंधित गुरुदेव है मान लो, रस्सी है गुरुदेव और रस्सी के बाद में जो ओखल है उसको वैष्णव समान मान लो और जमलार्जुन है ये साधक हैं अथवा साधारण जीव हैं। गुरु की कृपा इसी के माध्यम से, भगवान से गुरु, गुरु से वैष्णव और वैष्णव से साधकों के ऊपर में आती है। यदि साधकों का ऐसे वैष्णव से भी संग हो तो वैष्णव लोग गुरु के पास में ले जाएंगे और गुरु कृष्ण के पास में जाएंगे। ये एक उत्प्रेक्षा यहाँ पर है। अब जबकि पेड़ टूट गए, बड़ा जोर से शब्द हुआ, नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में स्नान करने के लिए जा रहे, दौड़े उधर में, क्या हुआ, बिजली नहीं गिरी, आंधी नहीं आई और इतने जोरों से शब्द हुआ और इधर में जो सुधा मैया का प्राण धक धक कर रहा था, देखा जी कृष्ण कहाँ, अरे तो आंगन में नहीं है, कहाँ गया, उनका प्राण धक। और ब्रजवासी जो जो ब्रज में जहां जहां था कोसों तक दूर तक माइलों तक शब्द हुआ, जो जहां से था वहीं पर दौड़ा। ये तो यशोदा जी के घर के पास में कहीं हो रहा है कुछ, कोई पुतना की तरफ में या और कोई विपत्ति तो नहीं आई, इससे सब लोग वहां पर दौड़े। वहाँ पर आकर के देखा रही ये तो पेड़ गिरा हुआ है, कृष्ण उसके नीचे सबका हुआ है और सखा लोग डरे हुए सहमे वहाँ पर हैं। नंद बाबा जी आकर के देखा, बड़े डर गए, अरे ये पेड़ यदि इनके ऊपर में गिर जाता तो न जाने क्या हो जाता। यशोदा मैया तो दूर से देख करके ही एकदम सूखी हुई लकड़ी की भांति हो गई। आज यदि ये मर जाता वृक्षों के तरफ में दब करके, आज क्या होता। सब लोग जहां तहां स्तंभित होकर के देख रहे हैं। नंद बाबा धीरे 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 समझने के लिए ये क्या हुआ, कैसे पेड़ गिरा, नीचे आए, निकट में जब कृष्ण की आयत दिखा रही, ये तो उखल से बंधा हुआ है, ये किसने बांधा और ये कैसे हुआ। बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा अरे ये कृष्ण ने छू दिया इन वृक्षों को और ओखल से लग करके ये वृक्ष गिर गए और इसमें से दो देवता निकले बड़े सुंदर और कृष्ण की परिक्रमा की और स्तौत्र स्तुति की और फिर उत्तर दिशा में चले गए। बाबा ने कहा ये बच्चे तुतुला तुतुला करके कह रहे हैं, इन पर विश्वास नहीं है कि कृष्ण ऐसा कर सकता है। इसे विश्वास नहीं हुआ, कृष्ण से को गोदी में ले लिया और इधर कृष्ण देखते ही नंद बाबा को जो अब तक सखर रस में डूबे हुए कुछ अभी हंस रहे थे, कालिख लगी हुई थी यहाँ वहाँ, और बाबा को देख करके और उनका स्नेह पा करके बड़े जोर से रोने लगे। उनका रोना देख करके बच्चों का भी हृदय द्रवित, वो भी उनमें से भी कुछ ऐसा, उन्होंने कहा यदि बच्चा दब गया होता तो न जाने क्या होता। नंद बाबा जी के आंखों से भी आंसू आ गए, जट उन्होंने गोदी में बैठाया, बैठा करके और धीरे 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 उसको खोल दिया बंधन को। बात्सल्य रस का बंधन बात्सल्य ही खोल सकता है या मधुर खोल सकता है, सख्य दास्य ये शांत वाले नहीं खोल सकते हैं। ये बंधन प्रेम का बंधन है, ये समझो कोई लकड़ी या रस्सी का ये बंधन नहीं है। नंद बाबा ने धीरे धीरे खोला, तब एक समझिए नंद बाबा कृष्ण को प्यार करते हैं, यशोदा मैया कृष्ण को प्यार करती है, इन दोनों में प्रेम का वैशिष्ट्य, कृष्ण के प्रति किसका अधिक प्रेम है। इन दोनों में जो दुख हुआ नंद बाबा को और यशोदा मैया को, यशोदा तो काठ हो गई, चल नहीं सकी, कृष्ण के निकट भी नहीं आ सकी। नंद बाबा अभी कुछ सांत्वना देने के मूड में हैं, उनका दुख उतना अधिक नहीं है जितना कि यशोदा का, तो भी बात्सल्य रस का बंधन उन्होंने खोला। बाबा ने बंधन खोल करके रोते हुए कृष्ण को सांत्वना देने के लिए पॉकेट से एक लड्डू गुड़ का निकाला, सब समय रखते थे कृष्ण को कुछ न कुछ देने के लिए, निकाल करके कृष्ण को दिया और कृष्ण सिसकते हुए न और त्रिवली हिल रही, गले की माला जो हिल रही, पेट की त्रिवली भी लगी हुई और सिसकते हुए सिसक रहे थे। बाबा ने पूछा अरे तुमको किसने बांधा, बांधा किसने, पूछने पर भी बतला नहीं रहे, मैया ये मुख से नहीं निकल रहा। फिर उन्होंने कहा कि बतलाओ तो सही, कोई भी हम उसे दंड देंगे, तुम बतलाओ किसने। तो मैया ने बांधा। अच्छा मैया इतनी निष्ठुर हो गई, मैं तो नहीं जानता था कि मैया इतनी निष्ठुर हो गई है, और तो जो निष्ठुर हर माँ हमें जानता हूं ना। अच्छा दंड तो दे नहीं सकते, दंड क्या देंगे, बातचीत किसी से नहीं करना, प्रेमी व्यक्ति से बात नहीं करना उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। ठीक है, अच्छा अत्यंत गंभीर हो गए और गंभीर होने के बाद में उन्होंने कृष्ण को और बलदेव दोनों को गोदी में उठाया, एक तरफ में बाएं तरफ में, दाहिने तरफ में कृष्ण को बाएं तरफ और दाहिने तरफ में बलदेव को धारण करके ब्रह्मांड भाग में गए और वहां जाकर स्नान किया, बच्चों को स्नान कराया, मलमल करके धो करके उनका काली इत्यादि सब छुड़ाया, छुड़ा करके घर आए। रोहिणी जी बड़ी बुद्धिमती थी, रसोई नहीं बनी। उन्होंने जिन्हें किसी तरह से थोड़ा सा रसोई बनाया बाबा के लिए और बच्चों के लिए। बाबा घर में आए, किसी से बात नहीं किया और आकर के बैठ गए। कृष्ण को गाय जा रही थी, छिड़क में ले गए और मिश्री देकर के मुख में बच्चों को और धारोष्ण से पेट एकदम उनका भर्ती कराया। दोनों का पेट भर गया। पेट भरने के बाद में आए धीरे 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 कुछ प्रसाद जो रोही मैया ने दिया बेमन से उन्होंने बच्चों को खिलाया थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा अपने दिया और अपने दरबार में बैठ गए। पहले धनी लोगों का ऐसा नियम होता था, ये एक अंतःपुर होता था जहां पर महिलाएं रहती थीं और एक होता था बहिर्द्वार। बहिर्द्वार में उनका दरबार लगता, गांव के बड़े बड़े लोग रईस लोग आते बैठते, उनसे बात होती, जिसको दरबार नंद जी का दरबार कहा जा सकता है। बाहर में घर से आकर के बैठ गए। कृष्ण ने बलदेव को ले लिया। अब करते 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 चार पांच छह बज गया, शाम हो गई। उपानंद की स्त्री नंद बाबा की भाभी लगती है, भाभी मैया के समान होती है। रोहिणी जी कुटुंब की महिलाएं वृद्धा ये सभी एकत्रित हो गए। बलदेव को साथ लिया और वहां पहुंच करके न इसको बलदेव को भी जाओ कृष्ण को पकड़ लाओ। बलदेव जी गए कृष्ण को पकड़ने के लिए। आज कृष्ण ने ऐसा थोड़ा सा झटका दे दिया ये बलदेव प्रभु जी गिर गए, आज नहीं ला सके और वो ऐसे देख रहे हैं बलदेव प्रभु। उपानंद की स्त्री वहां पर पहुंची, बोली अरे बेटा मैया के यहां चल। ओहो मैं नहीं जाऊंगा। रोनी मैया ने भी कहा मैया के यहां चल, मैया रो रही है तुम चल, नहीं जाऊंगा। खाएगा क्या, कहां किसके साथ रहेगा, बाबा के साथ में, रात में सोएगा कहां, आज तक तो मैया के पास में सोया जीवन भर, अब कहां सोएगा, बाबा के साथ। अरे खेलेगा किसके साथ में, दाऊ भैया के साथ में। उन्होंने कहा कि नंद बाबा ने कहा रोहिणी मैया के यहां तो जा। उन्होंने कहा कि आज हमको छोड़ करके चली गई, मैंने बहुत पुकारा ये भी नहीं आई, इसके पास भी नहीं जाऊंगा। जब सब हार गए तो रोहिणी मैया ने जसोदा मैया की जो स्थिति वर्णन किया नंद बाबा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने पूछा बेटा मैं जसोदा को पीट दूं। कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कुछ रोना रोना जैसा भाव आया। तब जब देखा ये किसी प्रकार से नहीं होता है तो रोहिणी मैया ने कहा तू जाएगा नहीं, अब तुम्हारी मैया यदि मर जाए नहीं कहा ऐसी हो जाए तो जहां सुना कृष्ण डकर डकर करके मैया मैया कह करके रोने लगी। रोहिणी जी रोने लगी, उपानंद की मैया रोने लगी, स्वयं नंद बाबा भी रोने लगे, बलदेव भी रोने लगे। वहां पर एक बीरा का इच्छा गया, सभी लोग रोने लगे और कृष्ण ने हाथ उठाया मैया मैया, रोहिणी ने गोदी में ले लिया और रोहिणी जी लेकर के जसोदा मैया काट की तरफ थी, अभी रो नहीं पा रही थी, वो एक तरह से बेहोश थी। जसोदा जी के गोदी में देने के साथ ही साथ में एक बात जैसे पहाड़ों में लावा फूटता है ज्वालामुखी, वैसे उनका बिरह एकदम फूट उठा और बड़े जोर से लाला लाला कह करके बेटा बेटा कह करके बड़ी जोर से रोने लगे। सब लोग उनको सांत्वना देने लगे, सबने ताके सांत्वना दी थी। तापरे जखन सब कुछ खन कांते 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 जखन एक तो सांत्वना हलो तखन रोहिणी मैया ए दिगे অল্প ভাবেতে রান্না করেছেন। নন্দ বাবা কো পরোসা গিয়া। কৃষ্ণ আজ নন্দ বাবা বলদেব আর ইনকো কৃষ্ণ কো বেঠা করকে উসকো থোড়া থোড়া কুছ খিলায়া, থোড়া সা আপনে খায়া। পহলে বোলা নন্দ বাবা, বোলে যাও যশোদা কো ভেজ দো, ও খিলায়েগি হম লোগো কো। কিন্তু যশোদা জি নহি আয়। কৃষ্ণ নে নন্দ বাবা নে কৃষ্ণ কো আপনি মাইয়া কো বুলা লা। তো কৃষ্ণ দৌড়ে হয়ে গে আর মাইয়া কা আঞ্চল পকড় করকে খেঁচনে লগে, আর উনকো কিসি প্রকার সে খেঁচ করকে মাইয়া মনা নহি কর সকি, জবরদস্তি খেঁচ করকে লে আয়ে। वहां पर वो जशोदा मैया बैठी, दोनों ने भोजन किया। इसके बाद में रोहिणी मैया ने कहा, ये तुम भी भोजन नहीं कर रहे थे, नंद बाबा तो भोजन नहीं करेंगे। कहे नहीं, पहले ये भोजन कर ले, मैं भोजन करूंगी। इसके बाद सब लोगों ने नंद बाबा के खाने के बाद में घर में गई और उसका जो बचा हुआ था उसे जशोदा मैया ने खाया, रोहिणी मैया ने सबको खिलाया और फिर वैसे एकदम सब बदल गया। इस प्रकार से एक साथ में कितने प्रकार की लीलाएं कृष्ण ने की, इसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। हम लोग विस्तार से और पीछे बतलाएंगे। आज हम यहीं पर अपना क्लास समाप्त करते हैं, अभी ये व्याख्या करके बतलाएंगे।